नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे नवनिर्मित झंझारपुर लौकहा रेलखंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आज 3 बार के विजेता दक्षिण कोरिया से खेलेगा। अन्य मुकाबलों में जापान की भिड़ंत थाईलैंड से और चीन की टीम का मुकाबला मलेशिया से होगा। और आज देवोत्थान एकादशी है, सभी मांगलिक कार्यों की होगी आज से शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा के शोभन में एम्स निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शिलान्यास स्थल का दौरा किया। कार्यक्रम को लेकर एनडीए के नेता और वरीय पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस एम्स के निर्माण से उनका सपना साकार हो रहा है। दरभंगा में एम्स के बनने से आने वाले समय में उम्दा स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलेंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी मिथिलांचल के लोगों को एक और सौगात भी देंगे। श्री मोदी कल ही दरभंगा से झंझारपुर लौकहा रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर रेल सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम से पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार आज दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दरभंगा आगमन को लेकर चेयरमैन यहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कल एम्स के शिलान्यास के साथ ही काकर घाटी से शीशो तक बने बाईपास रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। इससे यातायात सुगम होगा। प्रदेश की 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव को लेकर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे अधिक 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वहीं भाकपा माले 1 सीट पर मुकाबले में है। एनडीए खेमे से भाजपा 2 सीट पर जबकि जदयू और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एक रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्ष के महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की नेतृत्व वाली महागठबंधन ने 3 सीटें जीती थी। 1 सीट पर एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जीत मिली थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नवगठित जनसुराज पार्टी सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए बिहार से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही है। सीपीआई माले को छोड़कर अन्य 3 सीटों पर सभी प्रमुख दलों ने पिछले चुनावी दंगल में जीतने वाले विधायकों के परिवारजनों को उम्मीदवारी देकर उन पर भरोसा जताया है। इमामगंज क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा कुमारी, रामगढ़ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह उपचुनाव में प्रमुख उम्मीदवार हैं। बेलागंज की सीट पर सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह तथा पूर्व विधायक सुनील पांडे ने अपने पुत्र विशाल प्रशांत को तरारी निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
प्रदेश के 19 जिलों के 1580 पैक्स के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 13 नवम्बर तक निर्धारित है। कैमूर जिले में कल अध्यक्ष पद के लिए 19 और सदस्य पद के लिए 48 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं रामपुर में सदस्य पद के लिए 3 और अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अभ्यर्थी 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 26 नवंबर को होगा। मतदान के दिन या उसके अगले दिन मतों की गिनती होगी। पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष और सचिव सहित 12 पदों के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष और सचिव का पद अनारक्षित होगा। राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आज 3 बार के विजेता दक्षिण कोरिया से खेलेगा। 2 अन्य मुकाबलों में जापान की टीम की भिड़ंत थाईलैंड से होगी, जबकि चीन की टीम का मुकाबला मलेशिया से होगा। इससे पहले कल राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने मलेशिया को 4-0 से पराजित कर अभियान का आगाज किया। कल कई पेनल्टी कॉर्नर खोने के बाद भारतीय टीम 3 को गोल में बदलने में सफल रही। संगीता कुमारी के शानदार आखिरी गोल ने पिछले चैंपियन भारत की जीत पक्की कर दी। इससे पहले उद्घाटन मैच में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रोमांचक मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। जापान के लिए महो उयनो और साकी तनाका ने गोल किया, जबकि कोरिया के लिए मिहयांग पार्क और यूजिन ली ने गोल किए। एक अन्य मैच में चीन ने थाईलैंड को 15-0 से हरा दिया। मैच के अंतिम 2 क्वार्टर में 10 गोल दागकर चीन पूरे समय थाईलैंड पर हावी रहा। सारण जिले के हरिहर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कल से शुरू हो रहा है। मेले में सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र रहेंगे। राज्य सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर विभागीय बैठक कर मेले में व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव ने अपने अपने विभागों से संबंधित कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने विधि व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मेला क्षेत्र में 8 अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के माध्यम से मेला क्षेत्र को 8 वार्ड में बांटकर प्रत्येक वार्ड में 1-1 पशु चिकित्सालय कार्यरत किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से 21 विद्याओं के 63 शिल्पकार और बुनकर अपनी कलाकृति का प्रदर्शन करेंगे। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि मेला क्षेत्र की साफ सफाई के लिए 4 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र में 21 पुलिस चौकी और 9 वॉच टावर बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 26 सेक्टर में बांटा गया है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए 40 स्थलों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। 380 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रदेश में नियोजित शिक्षकों के लिए 2री सक्षमता परीक्षा के 7 विषयों की पुनर्परीक्षा कल ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार 9वीं और 10वीं कक्षा के संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य और फारसी तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए गृह विज्ञान और इतिहास विषयों की परीक्षा ली जा रही है। शिक्षकों के लिए नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। समिति ने कहा है कि जिन शिक्षकों के प्रवेश पत्र पर प्लास्टिक का आवरण लगा होगा उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट की संभावना है। कल राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में सीवान जिले के सराय थाना क्षेत्र के पुराना किला पोखरा में अख्तर अली के आवासीय ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी को मोबाइल बैंकिंग लेनदेन से जुड़े कागजात और कई संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। एनआईए इसकी जांच कर रही है। एक अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि कुछ लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए कई फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रभावित कर अलकायदा नामक आतंकी संगठन का सदस्य बनाया जा रहा था। वहीं कई युवाओं के बैंक खातों का उपयोग कर बाहरी देशों से रुपए भेजने और मंगाने का काम किया जा रहा था। गौरतलब है कि अख्तर अली के बेटे सुहैल के बैंक खाते को एनआईए ने संदिग्ध लेनदेन के मामले में 6 महीने पहले फ्रीज कर दिया था। सुहैल का जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फल का कारोबार है। इस सिलसिले में एजेंसी ने कल देश भर में छापे मारे थे। राज्य के सभी जिलों में पत्रों को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक विभाग केंद्रीकृत वितरण केंद्र खोलेगा। बिहार परिक्षेत्र के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इसके लिए 60 स्थानों का चयन किया गया है। इन केंद्रों के खुलने से डाक नहीं मिलने और खो जाने की समस्याएं भी कम होंगी। उन्होंने कहा कि हर 20,000 की आबादी पर एक केंद्र बनाया जा रहा है। श्री कुमार ने बताया कि अभी पटना में एक केंद्र काम कर रहा है, सभी केंद्र आपस में जोड़े जाएंगे। श्री नारायण यादव का कल निधन हो गया। वे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के जमशेद अशरफ को हराकर बलिया सीट जीती थी। यादव ने इस निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार जीत हासिल की। कल देर रात पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर सभी दलों ने गहरा शोक जताया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। अरवल, जमुई और पश्चिम चंपारण जिले में 2-2 व्यक्ति की मौत हुई है। आज देवोत्थान एकादशी है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पिछले 5 महीने से निद्रा में रहे देव जागते हैं। देव के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर बेगूसराय के सिमरिया धाम में शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। शेखपुरा जिले में रबी महोत्सव आयोजित कर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कृषि विभाग ने इस मौसम में 38 हेक्टेयर भूभाग पर गेहूं सहित अन्य रबी फसल की खेती का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में किसानों को जीरो टिलेज तकनीक सहित अन्य जानकारी भी दी गई। पटना जिले के गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक फल कारोबारी से 6 लाख रुपए लूट लिए। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चौक के पास पेट्रोल पंप के एक कर्मी से अपराधियों ने 3 लाख रुपए से अधिक लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राजगीर में एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है चक दे इंडिया से गूंजा राजगीर स्टेडियम, भोजपुरी गीतों के बीच दर्शकों की ऊर्जा बुलंदियों पर, तो खिलाड़ियों के हौसले सातवें आसमान पर। जापान के सैतो बोले बिहार के लोग बहुत अच्छे। दैनिक जागरण की सुर्खी है 7 साल से कम सजा वाले अपराध में नाबालिगों पर नहीं होगी प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने साइबर अपराध पर लिखा है 95 लोगों से साइबर शातिरों ने ठग लिए 2,24,81,000, पटना के थानों में 70 केस। प्रभात खबर ने शिक्षा मंत्री के हवाले से लिखा है जिन जिलों में एक ही अनुमंडल वहां विभाजन करके किए जाएंगे शिक्षकों के तबादले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे नवनिर्मित झंझारपुर लौकहा रेलखंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आज 3 बार के विजेता दक्षिण कोरिया से खेलेगा। अन्य मुकाबलों में जापान की भिड़ंत थाईलैंड से और चीन का मुकाबला मलेशिया से होगा। और आज देवोत्थान एकादशी है, सभी मांगलिक कार्यों की होगी आज से शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।